તો આંતરરાષ્ટ્રીય
સ્પીકર ફેરો સ્પીકર આ દિશામાં હજી ફેરવું બસ
શ્રી કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન સંસ્થા કે દ્વારા પ્રસ્થાપિત ઇસ ભાગવત સત્ર મે પધારે હોવે સમસ્ત વૈષ્ણવ ભક્તો કા હાર્દિક સ્વાગત હૈ. સાધુ સંતો સે પૂછા ગયા કે ઇસ સંસાર મે સબસે જ્યાદા ભાગ્યશાલી જીવાત્મા કોન હૈ ઓર વહ જીવાત્મા કિસકી ભક્તિ કરતા હૈ ઓર ઇસકા ઉત્તર ભગવાન ભગવદ્ ગીતા મે દેતે હૈ. 12વે અધ્યાય મે ભગવાન અર્જુન કો કહેતે હૈ, હે અર્જુન, યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન, જો દેવતાઓ કા ભજન કરતે હૈ વે દેવતાઓ કે લોક મે જાતે હૈ. પિતૃ યાંતિ પિતૃજા, જો પિતૃ લોકો કા ભજન કરતે હૈ, જો હમ લોગ યહાં પર ઉત્તર ગુજરાત મે જ્યાદા હૈ, પિતૃ યાંતિ પિતૃજા, જો પિતૃ કા સ્મરણ કરતા હૈ વો પિતૃ લોક મે જન્મ લેતા હૈ. ભૂતાની યાતિ ભૂતેજ્યા, જૈસે કલકત્તા આદિ દેવી દેવ વહાં પર દેવી દેવતાઓ કા ભજન નહીં કરતે, વહાં પર કહેતે ભૂત પ્રેત કા કરતે જ્યાદાતર, તો ભૂત લોક મે જાયેગા. યાંતિ મધ્યાજીનો અપી માં, લેકિન હે અર્જુન, મેરી જો ભક્તિ કરતા હૈ વો મેરે ધામ વૈકુંઠ કો પ્રાપ્ત હોતા હૈ, ગોલોક વૃંદાવન ધામ. વાસ્તવિક મે ઇસ પૂરે બ્રહ્માંડ મે સબસે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ અગર હૈ, વાસ્તવિક મે ઇસ સંસાર મે સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ અગર કોઈ હૈ તો વો હૈ કૃષ્ણ ભક્ત, જો ભગવાન કા ભક્ત હૈ. દેવતાઓ કા ભજન કરને સે આપ સ્વર્ગ મે ચલે જાયેંગે, લેકિન વહાં સે વાપિસ આના પડેગા. પિતૃઓ કા ભજન કરને સે આપ પિતૃલોક મે ચલે જાયેંગે, લેકિન આપકી સંતાન અગર બુરા કાર્ય કરેગી, ધર્મ કા પાલન નહીં કરેંગે, તો આપ પિતૃલોક મે સે નરક મે ચલે જાયેંગે. યે વેદો મે વર્ણન હૈ. કોઈ ભૂત પ્રેત કા ભજન કરતા હૈ તો ભૂતો કે લોક મે જાયેગા, ઓર વહાં પર આપકો તો પતા હૈ ભૂત પ્રેત કૈસે હોતે હૈ, ડુંબા ચુંબા ડુંબા કરતે એસે. લેકિન ભગવાન કા ભજન બહુત હી સાત્વિક હોતા હૈ, ઓર જો ઇન્ટેલિજન્ટ હોગા, જો ભાગ્યશાલી હોગા, જો બુદ્ધિમાન હોગા, વહી કૃષ્ણ ભક્તિ કો સ્વીકાર કરતા હૈ. ક્યું? ક્યુંકિ અનેક અનેક જન્મ તક વો ઠોકર ખાતા હૈ, ઓર કઈ ઠોકર ખાને કે બાદ હી ઉસે શુદ્ધ ભક્તિ મિલતી હૈ, હરેક વ્યક્તિ કો નહીં મિલતી. તો ઇસ 14 લોક મે સબસે જ્યાદા ભાગ્યશાલી કોન હૈ? કૃષ્ણ ભક્ત, જો ભગવાન કી ભક્તિ કરતા હૈ. એક તમોગુણી ભક્તિ બતાઈ ગઈ હૈ, જો સબસે લો ક્વોલિટી કી હૈ, ઉસકે ઉપર કી જો ભક્તિ હૈ ઉસે રજોગુણી ભક્તિ માનતે હૈ, ઓર ઉસકે ઉપર કી જો ભક્તિ હૈ વો સત્વગુણી માની જાતી હૈ. તો તમોગુણી ઉસે કહેતે હૈ જો ભૂત પ્રેત કા ભજન કરતે હૈ, ઉસે તમોગુણી કહેતે હૈ. જો પિતૃઓ કા ભજન કરતે ઉસે રજોગુણી કહેતે હૈ, જો દેવતાઓ કા ભજન કરતે હૈ ઉસે સત્વગુણી ભજન કરતે હૈ કહેતે હૈ. લેકિન ઇસકે ઉપર ભી એક ગુણ હૈ, તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ, તીન ગુણ હૈ. ઓર ભગવદ્ ગીતા મે ભી ભગવાન કહેતે હૈ, ત્રે ગુણિયા વિષયા વેદા નિસ્ત્રોય ગુણિયો ભવાર્જુન. હે અર્જુન, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। इस संसार में 99% 99% लोग हैं ना तीनों गुणों में खेलते हैं, लेकिन तीनों गुणों से ऊपर भी एक गुण है, वो सर्वश्रेष्ठ गुण है जो आपने कभी नहीं जाना होगा, और वो है शुद्ध सत्व गुण, जिसे विशुद्ध सत्व गुण कहते हैं। और उस विशुद्ध सत्व गुण में जब तक भक्त नहीं आएगा तब तक उसे भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। तीन गुण है तमो गुण। इसलिए देखिए भगवान के अवतार भी ऐसे होते हैं जो तमोगुणी, मांस खाने वाला, गाय का मांस खाने वाला, जो शराब पीने वाला होता है, तो उनके लिए भगवान ऐसे अवतार लेते हैं। रजोगुणी व्यक्ति होगा तो उनके लिए भी भगवान ऐसे अवतार लेते हैं। सत्वगुणी व्यक्ति होगा तो उनके लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन विशुद्ध सत्व अगर बनना है तो भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का सात्विक भजन करना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। और अंत काल में सभी जीवात्मा को उसी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, सभी भगवान के अंश है। और अपने गुणों के अनुसार हमारे शरीर में जैसे गुण हैं वैसे जगह पे हमें जन्म मिलेगा। अगर हम पापी जीवात्मा है तो पापी के घर पे जन्म मिलेगा, तमोगुणी व्यक्ति पे। हमने गत जन्मों में गलत कार्य किए होंगे तो इस जीवन में हमें ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां पर मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं, स्त्रियों का आचरण गलत होता है, ऐसे घर में हमें जन्म मिल जाता है। और ऐसे कार्य करते करते हम क्या है, नॉर्मल बन जाते हैं कि हमारे घर में तो चलता है। आप देखिए कि पूरे गुजरात में घूमिए तो सब जगह पे अच्छा वातावरण है, बॉम्बे में जाएंगे तो आपको मांस खाने वाले सब मिलेंगे, फिर दिल्ली में जाओ, यूपी बिहार में, तो वहां पर थोड़े लो क्वालिटी के मिलेंगे, कलकत्ता में जाओ तो सब आपको देवी के ही भक्त मिलेंगे, महाकाली के भक्त, दुर्गा देवी के भक्त, और उनको बलि चढ़ाकर खाने वाले। तो जैसे जैसे हमारे गुण होते हैं उस परिवार में भगवान हमें जन्म दे देते हैं, तो वहां से हमारा जो क्या कहते हैं जीवन की व्यथा है ना चालू हो जाती है। हमको ऐसा लगता है बस यही मेरा कुटुंब है, यही मेरा परिवार है, और उसी को पालते पोसते रहो। ये तो मात्र केवल निमित्त बन, हमको केवल क्या ना रोल निभाना है, उसमें आसक्त नहीं होना है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे परिवार है, मेरा पुत्र है। ये केवल रोल निभाना है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है, लेकिन जीवात्मा क्या करता है, उसी में फंस जाता है। हमको फोन नहीं करते हो, हमको बुलाते नहीं हो, याद नहीं करते हो। याद करोगे तो वजन उतना ही रहेगा, और नहीं करोगे तो भी उतना ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बस हमको याद, अरे उल्टा परिवार वालों को ऐसा कहना चाहिए कि आप भगवान का ज्यादा स्मरण करो, क्योंकि कभी ना कभी तो शरीर छूटने वाला है, लेकिन हमारा जो बुद्धि होता है ना वो माइक स्तर, माइक मतलब संस्कृत में है, माइक मतलब एकदम नीचे लो लेवल का है, बस परिवार में रचे पचे रहो। तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से भी ऊपर का गुण है, और वो है शुद्ध सत्वगुण। और उस स्तर पे, उस लेवल पे हमें आना है, और उस लेवल पर तभी आ सकते हैं जब शुद्ध भक्तों का संगति करेंगे, तब उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे। जैसे संत महात्मा अभी जो वर्तमान कार्य में हैं, उन्होंने भी बड़े भक्तों का संग किया होगा तभी वो संत बने होंगे ना। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, जैसे हम भक्त बने हैं, हालांकि हम भक्त नहीं है लेकिन बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम आज से 15 साल पहले आप ही के समान थे, कि हमारा भी कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने भी बड़े भक्तों का संग किया, उनके साथ रहे, उनके आदेशों का पालन किया, वो वे जब जैसे कहा वैसा हमने किया, और उसका रिजल्ट आज है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तब भक्त अपने आप को कहेगा कि मैं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई है। और ये गुरु और शास्त्र और भगवान की कृपा से मिलती है भक्ति। हमें हमारे हृदय में जो भक्ति मिलती है वो कैसे मिलती है? कहते गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो हमें भक्ति लता का बीज मिला है ना, ये गुरु कृष्ण की कृपा से मिला है, गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो हमारा बीज अंकुरित हुआ है हृदय में भक्ति लता का। सब लोग कहते हैं ना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए उसमें सिंचन तो करना पड़ेगा। जैसे आप सब, आपके माता पिता या आपके भाई परिवार वाले कोई खेती बाड़ी करते होंगे, तो खेती करने से क्या होता है, सबसे पहले खेती को धान उगाने के लिए जुताई करना पड़ेगा, खेत का जुताई करना, फिर उसमें खातर डालना पड़ेगा, गोबर का, गाय का, भैंस का, जो भी है खातर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें बीज डालना पड़ेगा, और बीज डालने के बाद पानी डालना पड़ेगा, सूर्य प्रकाश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, ऐसे कोई थोड़ा बीज उग जाता है। वैसे ही हमें भक्ति लता तो मिल गई है, गुरु और भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति लता को कोई खा जाएगा। जंगली जानवर होता है ना, जैसे आपने देखा होगा रास्ते पे छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं सरकार, महानगर पालिका, तो पौधे तो उगाती लेकिन बाउंड्री लगाती कि नहीं, जाली, लोखंड की जाली क्यों लगाते हैं बताइए? उसकी रक्षा के लिए। वो जो छोटा सा पौधा है वो तो कोई जानवर, बकरी भी खा जाएगी। कभी कभी हम क्या होता है, कई लोगों को हम तुलसी का पौधा देते हैं, प्रभु जी बकरी खा गई या कोई कुत्ता खा गया, कुछ हो गया, लेकिन उसको बाउंड्री लगाया होता, जाली, तो कुछ होता नहीं, उसकी रक्षा होती और धीरे धीरे वो तुलसी का पौधा बड़ा होता। तो वैसे ही हमारे हृदय में जो भक्ति है, वो भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसको संभालने के लिए, उसको सिंचन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी पाए। कहते श्रवण कीर्तन करे जलये सिंचन। श्रवण, ये जो हम हरि कथा जो श्रवण करते हैं ना, एक हरि कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में वो जल जाएगा, लेकिन जो श्रवण नहीं करेगा उसका भक्ति आगे बढ़ने वाला नहीं है, कभी नहीं बढ़ेगा। एक साल आया, दो साल आया, पांच साल आया। हमारे साथ एक बॉम्बे में एक अभी भी कम से कम 60 साल का व्यक्ति है, माला एक भी नहीं करता है, लेकिन वो कहता है मैं प्रभुपाद जी को मिला हूं। बोलिए, हर प्रोग्राम में भी जाता है लेकिन माला एक भी नहीं करता है, माला भी नहीं पहनता है, और वही कहते हैं चॉकलेटी कलर का टी शर्ट पहन कर ही आता है। आज भी मैं कम से कम उस व्यक्ति को 15 साल से देख रहा हूं, लेकिन उसके जीवन में क्रोध नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो श्रवण तो करता है लेकिन उस श्रवण को अपने हृदय में नहीं उतारता है। समझो, आपने एक घंटा कथा सुनी तो आपको इस कथा में क्या जानने को मिला, कि मुझे आज के कथा में मुझे ये जानने को मिला और मेरे अंदर ये अवगुण है, तो मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो हमारे हृदय में भक्ति लता तो आ गई है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन करे जलये सिंचन। ये श्रवण करना, भगवान की कथा सुनना, और सुनने के बाद अप्लाई मतलब अपने जीवन में उतारना, उसे कहते हैं श्रवण भक्ति। और शास्त्र में भी कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। नवधा भक्ति है, नौ प्रकार की भक्ति बोलते हैं नवधा। तो सबसे पहली भक्ति क्यों रखी है बताइए? सबसे पहली नवधा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति क्यों बताई गई? दूसरा बताता बताने चाहिए थी नहीं? क्योंकि श्रवण जितना आपका प्रगढ़ गाढ़ होगा, उतनी भक्ति परफेक्ट होगी। इसलिए श्रवण परफेक्ट करो। श्रवण, अब आप श्रवण करोगे तो आपका हरि नाम भी परफेक्ट होगा। हरि नाम मतलब भगवान नाम, भगवान का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
इसे हरि नाम कहते हैं, और महामंत्र भगवान नाम। कई लोग इसे यहाँ पर सत्संग में आते हैं, लेकिन पूछा जाएगा कि कितने लोग माला करते हैं, माला क्यों ठीक से नहीं हो रही है, अथवा माला करने में क्यों मन नहीं लगता है? इसका कारण यह है कि हम ठीक से नाम जप, ठीक से श्रवण हरि कथा नहीं हो रही है। आया राम गया राम, चलो बुलाया है तो चलते हैं। तो ठीक से श्रवण कीजिए, और जब ठीक से श्रवण होगा तो आपका कीर्तन, जो महामंत्र जो जप करोगे ना घर पे, वो भी ठीक से होगा। और प्रत्येक भक्त को 16 माला जप करनी चाहिए। 16 माला, एक माला में 108 मोती होते हैं। जैसे ये माला है, इसमें 108 मोती है, लंबी 108 मोती की माला है। ये तुलसी की ओरिजिनल माला होती है, और गुरु महाराज के द्वारा दिया जाता है। गुरु महाराज यज्ञ में इस माला के ऊपर नाम जप करते हैं, और यज्ञ में जब हम सब बैठते हैं दीक्षा लेने के लिए गुरु महाराज से, तब गुरु महाराज कहते हैं कि आज से आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के जितने भी पाप हैं, वे सब यज्ञ के द्वारा गुरु महाराज लेते हैं, कि आपके जितने पाप हैं हम ले लेंगे, और आज से आप महामंत्र का जाप करना। कितना? कहते 16 माला जप। तो ये नियम है कि प्रत्येक भक्त का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे में हम 23,000 बार श्वास लेते हैं, 24 घंटे में, डे नाइट। तो 24 घंटे में 23,000 श्वास लेते हैं, और जो मंत्र जपते हैं उसमें 108 मोती की जो माला करते हैं, ऐसी 16 माला जप करने से कम 26,000 नाम जप हो जाता है। तो जो भक्त 16 माला जप करते हैं ना, वो श्वास श्वास में भगवान का रटन करते हैं, भगवान का नाम। और कई लोग आते हैं 2 साल से 3 साल से, उनको पूछते हैं माला होती है? हाँ होती है ना, एक माला हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। बोले अभी आपको 16 पे पहुंचना है और आप एक पे लटक रहे हैं, तो कैसे होगा कल्याण? इस संसार में तो हमारा कल्याण करते हैं सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, लेकिन शरीर छूटने के बाद तो कल्याण करना है कि नहीं? सबका कल्याण होगा भगवान का नाम जप करने से, सबका कल्याण होगा। जिसका कल्याण भाई नाम है उसका भी, और जिसका नहीं है उसका भी, सबका कल्याण होगा। लेकिन एक चीज है, महामंत्र को ज्यादा रटन करो, भगवान के मंत्र का। इसलिए प्रतिदिन नाम जप कीजिए, नाम में रुचि बढ़ाइए, और जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए प्रश्न करना चाहिए कि मेरी भक्ति इस प्रकार से होती है, मुझे क्या करना चाहिए। हे गुरुदेव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और एक भक्त के जीवन में तीन गुरु होते हैं। भगवत धाम जाने के लिए तीन गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु जो दीक्षा देते हैं यज्ञ में, हरिनाम दीक्षा देते हैं, वो सबसे बड़े गुरुदेव होते हैं, जो भगवान के समान पूजनीय हैं। दूसरे गुरु जो कथा के द्वारा हमें भगवान में रुचि जगाते हैं, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। जो हमें कथा करके भगवान में जुड़ाते हैं, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। और तीसरे गुरु बोलते हैं काउंसिलर, सलाहकार। काउंसिलर का अर्थ होता है कि काउंसिल सिस्टम होता है, ऐसे प्रत्येक सेंटर है। इस्कॉन के कम से कम 700 मंदिर है पूरी दुनिया में, और हर मंदिर में काउंसिल सिस्टम होता है। तो जैसे यहाँ पर समझो 50-100 भक्त आते हैं, लेकिन उनमें से केवल चुन चुन कर अच्छी क्वालिटी के जो भक्त होते हैं, उनको काउंसिल सिस्टम में डाइवर्ट किया जाता है कि आप इस प्रोग्राम में आइए। और उसमें भक्त को विशेष ज्ञान दिया जाता है कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम विशेष चीज बताएंगे। तो यहाँ पर जो 100 प्रोग्राम में जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो केवल एक काउंसिलिंग में आएगा, उसे तुरंत मिल जाएगा ज्ञान। मतलब आप 1.5 साल तक प्रवचन में आप आते रहोगे ना, लेकिन एक काउंसिल अटेंड कर लिया केवल 1 घंटे का, तो कहते 1.5 साल का जो ज्ञान है केवल एक काउंसिल मीटिंग में हो जाएगा आपको। तो हमारी भक्ति में ज्यादा तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। तो एक गुरु के तीन गुरु होते हैं एक भक्त के जीवन में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और काउंसिलर। तो इस प्रकार से ये पूरा मैंने आपको नियम बताया कि एक कहते हैं ना, अनजान व्यक्ति को किस प्रकार भगवत धाम जाना चाहिए। तो उसके लक्षण मैंने बताए कि सबसे पहले उसे शुद्ध सत्व गुण भक्ति करनी होगी, और गुरु के सानिध्य में गुरु जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से उसे भजन करना है। ये सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आया राम गया राम। अरे इस संसार की कोई भी चीज आप ले लीजिए, लेकिन उसमें कितना सिस्टम है। कोई भी एक साधारण नौकरी भी करना है ना, चपरासी का, उसमें भी फॉर्म भरना पड़ता है। कितने ठोकर सरकारी नौकरी में होता है कि नहीं होता। एक केवल राशन कार्ड में केवल नाम लिखना है, हमारा नाम लिखवाना है, तो भी कितने धक्के खाना पड़ता है, कितना नियम है बताओ। अरे इस संसार के एक साधारण चीज करने में भी हमें कितना नियम और कानून है। तो भगवान की भक्ति में नियम नहीं होगा, आप सोचिए। इतनी दिव्य चीज हमको प्राप्त करनी है तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी। इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और सामने से हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये प्रोग्राम को हमें अटेंड करना है, प्रभु हमें आप कुछ सहयोग कीजिए, आप जैसा कहेंगे उस प्रकार से हम इस कार्यक्रम में आएंगे। तो मैंने आपको श्रवण भक्ति की महिमा और एक भक्त को भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके विषय में मैंने आपको बताया। वास्तविक में इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यशाली जीवात्मा मात्र कृष्ण भक्त है, और दूसरे लोग 84 के चक्कर में घूमने वाले हैं। तो इस 84 के चक्कर में से अगर मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति कीजिए। यहाँ पर प्रति रविवार को वित्रासुर की कथा हम श्रवण करते हैं। वित्रासुर इंद्र देवता, तो इंद्र देवता ने वित्रासुर का गला काटा, जो करवत के समान था वज्र। तो ऐसे जब गला काटा तो काटते काटते जब एंड भाग आया ना, एंड भाग, तो 1 साल लगा। जैसे कोई मिस्त्री होता है तो ऐसा ऐसा काटता है तो 2 मिनट में तो काट देता है, ऐसा ऐसा करके 2-4 रन ऐसा रंधा मारेगा तो कट गया। लेकिन यहाँ पर वित्रासुर का जो गला काटते काटते के इंद्र देवता को, यहाँ साधारण का पेंटर नहीं था, कारपेंटर, साधारण कोई मिस्त्री होगा तो बात अलग है, वो मिस्त्री कहाँ का था, स्वर्ग के देवता 33 करोड़ देवता, उनका राजा इंद्र, और वो इंद्र देवता ने जब वज्र से काटा गला, गला काटते काटते 365 बितारा, खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं, 365 दिन। परीक्षित ने तो 7 दिन कथा सुना, ओनली 7 डेज, लेकिन वित्रासुर का गला काटते काटते इंद्र देवता को पसीना छूट गया। इंद्र देवता को, वित्रासुर तो मर गया और 33 करोड़ देवताओं ने फूल डाला और कहा कि वाह इंद्र देवता वाह, लेकिन बलि का बकरा कौन बना, पाप किसको लगा, वो जानना है ना। कभी कभी शादी होती है, कभी कभी कुछ ऐसा फंक्शन होता है ना, तो बड़ा टोप उठाना पड़ता है, सब्जी का, चावल का, कढ़ी का, कुछ मिठाई का, लड्डू का, तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे इसको कौन उठाएगा, तो कोई वीर हो जाता है ना, अपने आप को वीर मानता है, अरे मैं उठाऊंगा, तो टोप उठाने जाता है, लेकिन क्या होता है, कमर, ऐसी स्थिति होती, बलि का बकरा वो बन गया, ऐसे इंद्र देवता भी बलि का बकरा बन गया। हालांकि सबको सुख मिला, 33 करोड़ देवताओं को, ऋषि मुनियों को, लेकिन उसका जो पाप किसको लगा, मारने वाले को ही लगेगा ना, क्योंकि वित्रासुर ब्राह्मण था, विश्वरूप का भाई था बड़ा, तो ब्राह्मण की हत्या, एक तो विश्वरूप की हत्या की तो 4 लोगों ने पाप लिया था, मालूम है ना, स्त्री ने लिया, जल ने लिया, पेड़ों ने लिया और भूमि माता ने। तो स्त्री को मासिक धर्म आता है, उस समय अगर कोई पुरुष सहवास करता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और बलून आते हैं पानी में, क्या बोलते हैं, फुवारा, जब परपोटा, अभी तो नल में भी, वॉश मशीन में भी ऐसा आता है, केवल शावर जैसा, लेकिन वो अगर वो पानी से अगर हम पिएंगे ना तो कितना पाप लगेगा बताओ, ये पाप करने की जड़ ही है और कुछ नहीं है। बलून वाला जो पानी हम पिएंगे, स्प्राइट पिएंगे, वो भी लिक्विड है ना, तो जैसे डाला तो क्या हो गया, वो पिएंगे तो हमें वो पाप लगेगा। अभी जिनको पाप सर पे नहीं चढ़ाना है वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, फूंक फूंक कर पिएंगे, उसमें से सब बलून निकाल कर। कभी कभी वो चाय वाला रेलवे में क्या करता है मालूम है, चाय इतना ऊपर से डालता है ऐसा, ताकि ज्यादा बलून आएंगे तो मतलब पूरा कप भरा हुआ लगेगा। ये सिस्टम है हर चीज का, क्या बोलते हैं, दिमाग, कितना शातिर दिमाग वाले होते हैं। तो बलून वाला जो पानी होता है, फुवारे परपोटा वाला, वो पानी नहीं पीना चाहिए, अगर वो पानी पीता है तो उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जितने भी पेड़ पौधों ने पाप लिया 25%, तो पेड़ में गोंद आता है, गुंदर, और वो अगर ठंडी में लिक्विड वाला भी गोंद कहते ना, गूंद बांधो, वो अगर कोई खाता है तो उसे भी पाप लगता है। तो 4 प्रकार के पाप ये है जो विश्व रूप को मारने से लगे थे, लेकिन 4 लोगों ने लिया तो इंद्र देवता तो पाप में से मुक्त हो गए। अब इस बार इंद्र देवता बहुत दुखी हो गए, सब लोग तो नाचने लगे, लेकिन इंद्र देवता तो दुखी हो गए, अब क्या करूं। तब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा कि हे इंद्र, आप चिंता मत करो, आपको जो वित्रासुर को मारने का जो पाप लगा है, इसका उपाय हमारे पास है। क्या करेंगे, हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे परीक्षित, सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर कहा कि हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, और ये इतनी बात नहीं, केवल कोई भगवान का नाम ले लेता है ना तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर ये प्रूफ है, ऐसा बात नहीं है कि केवल मैंने मेरी मति में आया तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर कहते हैं श्री शुक उवाच, हय मेघेन पुरुषं परमात्मानं ईश्वरं इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेपि जगद्धतां। कहते हैं जो अश्वमेघ यज्ञ करता है ना, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब आपकी जिज्ञासा होगी जानने की कि अश्वमेघ यज्ञ कैसे होता है, लाओ ना हम भी हमारे घर पे करेंगे। अश्वमेघ यज्ञ कैसे होता है ये आप जान लीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? हालांकि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ सबसे बड़ा माना जाता है, जो हवि अग्नि द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। उसमें जो जितने भी पात्र होते हैं ना, बर्तन, वो सब सोने के होने चाहिए। ये सबसे पहला रूल्स, नियम। उसमें जितने भी ब्राह्मण होते हैं वे सब शुद्ध होने चाहिए, पैंट शर्ट वाले नहीं। यहाँ पे तो आता है, लेकिन वो भी पैंट शर्ट वाला, और मुख में भी पूरा गुटका चालू है, हवन भी चालू होता है, मुख में भी हवन चालू रहता है, 30 नंबर ब्रिस्टोल। तो ऐसे भूदेव नहीं चाहिए। और कहते उसमें जो घी डालते हैं वो चर्बी वाला नहीं, सागर बनास, इसमें भी 30% भेद करते हैं। सरकार भी कहती है कि इसमें डालो, बताइए। हमको ऐसा लगता है कि हम बनास का घी खाते हैं प्योर, लेकिन उसमें भी 30% भेद है चर्बी का। अगर शुद्ध घी अगर चाहिए तो यहाँ से केवल 100 किलोमीटर दूर जाइए, आपको देसी आग में पका हुआ 1200 रुपए किलो गाय का शुद्ध पवित्र पथमेड़ा धाम नंदगांव जहां पर है, सांचौर में, वहां पर मिलेगा 1200 रुपए किलो प्योर घी एकदम। लेकिन वो भी प्योर है ही नहीं वास्तविक में, क्योंकि उसमें भी इतनी एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। हालांकि वो लोगों ने कोई मिलावट नहीं किया है, लेकिन आजकल गायों में कहां शक्ति है। पहले की गायें ऐसी थी कि खेती बाड़ी करते थे ना, खेती, नंद बाबा और यशोदा पांडव लोगों के समय का द्वापर युग में, तो खेती किससे होती थी मालूम है? दूध से होती थी। आप सोचो, ये तो हमारे दिमाग से बाहर हो जाएगा कि दूध से खेती होती थी, हाँ तो खारू पानी न मिलती। मनुष्य को पीने के लिए पानी नहीं है तो क्या खेतीबाड़ी में कहां मिलेगा? मुझे ये स्थिति है। कितने जीवात्मा का स्तर, कितना लेवल नीचे नीचे आता गया है, आप सोचिए। इसलिए एकदम ऊंचे लेवल पे आप आइए और भक्ति के स्तर पर रहकर भगवान का भजन कीजिए। इंद्र देवता को जब पाप लगा तब सभी देवताओं ने कहा कि आप अश्वमेघ यज्ञ हम करेंगे आपके लिए। इंद्र देवता को कहा आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है, हम सब करेंगे, आप बताइए क्या क्या करना है, बताइए। एक व्यक्ति से क्या होगा? चाहे कोई भी सेंटर चलाता हो, मंदिर चलाता हो, सत्संग करना हो, कुछ भी हो, बड़ी बड़ी सिटी में एक सेंट कहते हैं ना, एक नामहट केंद्र, एक हाउस प्रोग्राम भी करना है ना, उसके लिए भी 10 जन सेवक चाहिए, कि एक बिछाने वाला, एक साउंड लगाने वाला, एक अनाउंसमेंट करने वाला, एक भगवान का श्रृंगार करने वाला, एक प्रसाद बनाने वाला, इस सबकी अलग अलग सेवा होती है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा सेंटर है लेकिन सेवाधारी कोई भक्त है ही नहीं। तो ये है, इंद्र देवता ने कहा कि ठीक है आप ये चीज कीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस अश्वमेघ यज्ञ करने में क्या 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 चीज चाहिए। शुद्ध गाय का घी, शुद्ध ब्राह्मण, उसमें जितने भी बर्तन है वो सब सोने के चाहिए, और चौथी चीज जो हम यज्ञ में जो माचिस चाहिए वो साइकिल स्पोर्टस की नहीं चाहिए, अरणी, जो दो लकड़ा घिसते हैं ना उससे जो आग, कोई भी चीज उसको पवित्र माना गया अरणी, उससे जो यज्ञ में जो आग पैदा होती है ना, वो 33 करोड़ देवताओं को पहुंचती है या भगवान को पहुंचती है, उसके अलावा हाथ तो जो भी है यज्ञ करते हैं, वास्तु यज्ञ, गृह शांति यज्ञ जो भी है। तो मैंने जो ये चीज आपको बताई, ये कलयुग में पॉसिबल है। और यज्ञ छोटा नहीं, बहुत बड़ा गांव में जब गांव वाले मिलकर जो करते हैं ना, कहते हैं पूरे समाज के समाज मिलकर भी ये अगर करेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा अश्वमेघ यज्ञ है। और ये यज्ञ करना है, और एक घोड़ा, एक जो घोड़ा होता है ना पूरी पृथ्वी में घूमता है, चक्कर लगाता है। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे इस अश्वमेघ यज्ञ से बाधा हो रही है, डिस्टर्ब है, तो घोड़े को पकड़ के रख लेगा और उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा आपको, तब वो घोड़ा आगे जाएगा धीरे धीरे, पूरी पृथ्वी का चक्कर लग जाएगा, तब उस घोड़े को उस यज्ञ में आहुति दी जाएगी और वो जो घोड़ा है ना दिव्य शरीर प्राप्त करके उसी क्षण में है ना भगवत धाम चला जाएगा। कलयुग में पॉसिबल है? नो। उसे कहते हैं एक अश्वमेघ यज्ञ। और ऐसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करोगे तो वह व्यक्ति स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तो कहा कि एक अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आगे भी कहते हैं ब्रह्महा पितृहा गोधनो मातृहा आचार्यहा गवान स्वाद पुलक सको वापी शुद्ध येन रन यस्य कीर्तनात। मैंने जो आपको ये सब चीज बताई गई, ब्रह्महा ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा जी और 33 करोड़ देवता कहते हैं कि आपको तो एक छोटा सा तुच्छ पाप लगा है एक ब्राह्मण को मारने का, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से बोले हैं भागवत में, कहते हैं ब्रह्महा, किसी ने ब्रह्म हत्या की है। ब्रह्म हत्या मतलब गर्भ में मार डालते हैं बालक को, छोटे छोटे जीव जंतु को मार देते हैं, गाय को मारना यहाँ पर किया। पितृहा अपने माता पिता का भी कोई मर्डर कर देता है ना, कई बार आता है ना पेपर में, तो ब्रह्महा पितृहा गोधनो, किसी ने गाय का मर्डर कर दिया है। मातृहा अपने माता को मार दिया है। आचार्य, कई कई लोग ऐसी भी होते हैं जैसे अपने गुरु का मर्डर कर देते हैं, ऐसा होता है ना, इंद्र देवता ने किया था ना विश्वरूप का, मार डाला। आचार्य अगवान कहते हैं यहां पर, कहते हैं कि हे देवराज, कोई ब्रह्महा मतलब ब्राह्मण का हत्या किया है, पिता का, माता का, गाय का, आचार्य का, वगैरह वगैरह, मतलब जो भी चीज है इस संसार में जितने भी पाप किए हैं, लेकिन कहते हैं शुद्धयेन यस्य कीर्तनात, जो एक बार जो कोई भगवान का नाम लेता है ना तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, बताइए। कहते एक नाम लेने से अगर कोई समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तो कोई अश्वमेघ यज्ञ करेगा, खर्चा वाला काम करेगा कोई? अगर भगवान का एक बार कृष्ण नाम ले लिया ना तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता, इतनी बड़ी महिमा है नाम की। और मैं नहीं कहता हूं, महाभारत में वेद व्यास जी ने 5,500 वर्ष पहले लिख दिया है। एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणामो दशास्व मेघेन वृथेन तुल्य। ये तो प्रणाम की महिमा वहां पर बताई गई है। एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणामो, कोई एक बार दंडवत प्रणाम कर ले, हम लोग क्या मंदिर में आते हैं तो स्टेच्यू जवाहरलाल नेहरू ऐसे खड़े हो जाते हैं भगवान के, अरे कोई छोटा होता है ना तो उसके चरणों में झुक जाता है। हम भगवान से छोटे हैं, बड़े नहीं है, आंख से आंख जैसे एक बहू और सास कैसे, लेकिन बहू हमेशा जब सास खाट पे बैठती है ना तो बहू नीचे बैठ जाती है, लेकिन अभी की बहू खाट पे बैठती और सास तू इधर बैठ जा। अभी लेवल, क्योंकि ये क्या वातावरण और जो कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि घर हर घर में बहू का चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे से बड़े भगवान हैं, तो भगवान के सामने झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र में यह भी बताया गया है कि स्त्रियों को, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, वक्षस्थल, स्त्रियों का जो वक्षस्थल है जमीन में टच नहीं होना चाहिए, पंचांग प्रणाम। कई बार स्त्रियां है ना दंडवत प्रणाम सो जाती है, नहीं। तो ये सब जानना है तो उसके लिए काउंसिलिंग है कि क्या क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, सब कुछ सिखाते हैं, कैसे खाना चाहिए, किस हाथ से खाना चाहिए, कौन सी उंगली से नहीं खाना चाहिए, मंदिर में कैसे प्रणाम करना चाहिए, बाहर के लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, नाम जप कैसे करना चाहिए, भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को क्या मंत्र बोलना चाहिए, गुरु महाराज का क्या मंत्र है, देवताओं का क्या मंत्र है, रात को सोते समय किस दिशा में सोना चाहिए, कौन सी दिशा में जप करना चाहिए, ये सब कुछ उस काउंसिल सिस्टम में बताया जाता है। तो कहते हैं एकस्य कृष्णस्य, एकस्य मतलब एक बार कृष्णस्य कृत प्रणामो, कहते एक बार कृष्ण को कोई प्रणाम कर लिया है तो वेद व्यास जी लिखते हैं दशाश्व मेघे न वृथे न तुल्य, कहते उसे दस अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है एक बार प्रणाम करने से। तो सब लोग अभी 9 बजे कथा होगी तो सब लोग प्रणाम कर देंगे, 10 अश्वमेघ यज्ञ, अब तो मैं प्रभु रोज का 100 दंडवत प्रणाम करूंगा, कंपनी में जाऊंगा तो सबसे पहले यहां प्रणाम करके जाऊंगा, तो मेरे खाता में अकाउंट में इतना जमा होगा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि एकस्य कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्व मेघेन वृथेन तुल्य, उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है एक प्रणाम करने से। लेकिन वेद व्यास जी को रहा नहीं गया, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से पड़ेगा इस लेकिन कहते हैं दशाश्वमेघे न वृथे न तुल्य कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो फिर से माता के गर्भ में जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण को अगर किसी ने प्रणाम किया है तो पुनर्जन्म न विद्यते, वो डायरेक्ट भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। ये है, इसलिए जब भी हम घर से निकलते हैं तो हमारे घर में भी ऐसा ऑल्टर बनाना चाहिए, मंदिर, उसमें ठाकुर जी का विग्रह, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण बलराम, गौर निताय, राधा कृष्ण, शालिग्राम जी, अगर नहीं हो सकते तो राधा कृष्ण का फोटो रखना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक घर भी मंदिर बन जाएगा। इसलिए प्रतिदिन मंदिर को साफ करना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, दीप दीवो करो भगवान को। तो इस प्रकार प्रतिदिन मंदिर मंदिर में है ना, हमारे घर में भी मंदिर बनाकर ठाकुर जी को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव को प्रणाम करने से भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम बिना के होना, ये बार करुणा करो, एक बार करुणा करो वैष्णव भक्तों, जिसके बाल पे तिलक है, गले में कंठी है, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, ऐसे वैष्णवों की बात है। हम भी वैष्णव बन सकते हैं, लेकिन हमें पहले मांगना पड़ेगा, हमारे पास ये कुछ नहीं है तो तो सबसे पहले हमें नाम जप करना पड़ेगा, भाल में तिलक लगाना पड़ेगा, गले में कंठी। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं एक बार करुणा करो और आपकी करुणा होगी तो मेरी भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पति तपावन तो मां बिनु केहू नहीं। और आपके अलावा मेरे को मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं, सबसे पतित हूं, सबसे अधम हूं। सबसे जो पतित अधम होगा उसके ऊपर ज्यादा कृपा होगी ना। समझो नरेंद्र मोदी एक एक लाख रुपया देंगे कि भाई मैं लाख लाख रुपया देने वाला हूं, पैसा बोलो किसको चाहिए। सब लोग बोलेगा नहीं मेरे पास तो है पैसा बहुत सारा है, तो उसको मिलेगा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं तो एकदम भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे तू 2 लाख ले जा, तू भिखारी है ना, तू 2 लाख ले जा। लेकिन कोई बोलेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है, तो उसको मिलेगा। वैसे ही भक्ति की कृपा, भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो पतित से पतित बन जाता है, नम्र से नम्र, कि मेरे में कोई भक्ति नहीं है, मैं तो एकमात्र ट्रेनिंग ले रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा मिलती है। ऊपर से तो करना चाहिए, भले अंदर से तो नहीं होगा लेकिन ऊपर से तो करना चाहिए। बोलते ना क्या मक्खन लगा रहे हो, ऐसा बोलते है ना। तो ऊपर से तो नम्र बनना चाहिए कि हे वैष्णव, हे गुरुदेव, हे भगवान, भगवान को कहना चाहिए कि हे भगवान आप तो सबके हृदय की बात जानते हो, मेरे हृदय की बात किया है, लेकिन वास्तविक में मैं नम्र भाव से कहता हूं कि आपके चरणों की भक्ति मुझे मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव कितनी महिमा है, वैष्णव की बताओ, जो भगवान का भक्त है उसकी कितनी बड़ी महिमा है। और आगे दूसरी कड़ी में क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में कहते हैं गंगार परश होइले पश्चाते पावन, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो ये तो मार गुण। गंगा नदी का तो कोई सेवन करेगा, उसमें स्नान करेगा, यहां से हरिद्वार का टिकट निकालेगा और हरिद्वार में डुबकी लगाएगा, उसके बाद पवित्र होगा। और वो भी गंगा नदी में अगर कहते हैं ना विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं होगा। गंगार परश होइले पश्चाते पावन, पवित्र कहते नहाने के बाद वो पवित्र होगा। लेकिन कहते हैं जिसने धोती कुर्ता पहना है, जिसने तिलक लगाया है, चाहे स्त्री हो पुरुष, जिसने तिलक लगाया है, भाल में तिलक है, गले में कंठी है और भगवान के नाम के जप कर रहा हो, तो उसे वैष्णव कहते हैं। और ऐसे वैष्णव का अगर कोई दर्शन कर ले तो उसे गंगा नदी में स्नान करने का फल मिल जाता है तुरंत ही, बताइए। तो हमें ऐसे वैष्णव लोगों को इस पालनपुर क्षेत्र में कहते हैं ना प्रोग्रेस की ओर ले जाना है, बढ़ाना है, प्रोडक्शन बोलते हैं ना, तो एक बने, दो बने, चार बने, पांच बने, 50 बने, 100 बने। तो ऐसे भक्तों का दिन प्रतिदिन हमें प्रचार करके भक्तों को मंदिर में लाना है। और आपके एरिया में भी आप सत्संग रखिए ऐसा कि प्रभु आप हमारे एरिया में आइए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, बताइए। वो डिंग डांग वाला आएगा 50,000 लेके चला जाएगा, डीजे बजाएगा, थोड़ा साउंड बजाएगा और थोड़ा ठुमका लगाएगा, ऐसा ऐसा तो सबको आनंद मिल गया, लेकिन 50,000 का बंडल लेके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैष्णव भक्त लोग बिना स्वार्थ, निसंकोच, कुछ भी, कोई स्वार्थ नहीं है, कहते हरिनाम, भगवान का प्रसाद, भगवान का कीर्तन, कितनी शुद्ध वस्तु देते हैं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, इतनी दिव्य चीज लेने वाला कोई नहीं है, दिव्य कथा, दिव्य प्रसाद, बताइए। लेकिन उसके लिए भी कहते हैं ना पात्र चाहिए, गुजराती में कहवाय ने सिंह नु पात्र जोवे, लायन कहते ना सिंह का पात्र चाहिए। सिंह का जो दूध होता है वो बोलते हैं ना सिंहण नु दूध, शेरनी का दूध है ना वो कोई भी पात्र में टिकता नहीं है, ऐसा कहावत है। उसके लिए कुछ सोने का पात्र चाहिए, ऐसा कुछ कहावत है। तो उसके लिए भी भक्ति को टिकाने के लिए भक्ति का भी कुछ पात्रता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी टिकने वाली है। इसलिए भक्त बनो, आपन पहले अपना उद्धार करो, फिर हमारी कॉलोनी का, फिर हमारे नगर का, फिर हमारे देश का, समाज का, सबका कल्याण करो। खुद तो भक्ति करो लेकिन लोगों को भी भक्ति के मार्ग में लगाओ। भक्तों हम वृंदावन में भक्ति कर सकते थे कि चलो वृंदावन में हमारे पास प्रॉपर्टी है, धन है, तो वहां पर भक्ति करते थे, तो यहाँ पर ये सब मगजमारी करने की क्यों जरूरत है बताइए। कि नहीं, आपको भी ज्ञान और भक्ति मिले, आपको भी भगवान के साथ संपर्क हो और आप भी वैष्णव बनो, भक्त बनो, और भक्ति करके आप भी भगवत धाम चले जाएंगे। भक्तों इतना गारंटी देता हूं कि एक न एक दिन आपके हृदय में भी ऐसा परिवर्तन आएगा, एक साल, दो साल, छह महीने के बाद। हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सामने से बोलेंगे प्रभु जी चलो ना हम सब सुविधा कर दे, आप यहाँ पर प्रचार कीजिए, यहाँ पर भक्ति करो, सत्संग करो। लेकिन जब हमारे हृदय में जब तक नहीं आएगी तब तक कोई बोलता है ना कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ आपका निश्चित आपका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारा रोग ठीक नहीं होगा तब तक हमको डॉक्टर का विश्वास आएगा कभी नहीं। लेकिन जैसे ही रोग ठीक हो जाएगा ना तो हम सबको फोन करते, अरे उधर मत जाना तुम इधर ही जाना। अगर सच्चा कोई व्यक्ति हमारा रिलेटिव होगा तो क्या बोलेगा, अरे तुम उधर जाना ही मत, ये डॉक्टर के पास जाओ। परिन पटेल जबरदस्त हड्डी का डॉक्टर या मयंक शाह जो भी है यहाँ पर जितने भी, तो कहते ये डॉक्टर के पास जाओ, ये स्पेशलिस्ट है, मेरा एकदम परफेक्ट ठीक हो गया, पैसे भी कम और काम अच्छा बेटर। तो हमारे हृदय में अगर भक्ति आ जाएगी ना तो निश्चित हमारा हृदय भी पिघलने लगेगा। हमारा तो कल्याण होगा लेकिन हम पूरे देश का, समाज का, परिवार का, सबका कल्याण करेंगे। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो यहाँ पर हरिनाम के विषय में बताया है, ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से 33 करोड़ देवताओं के सामने इंद्र देवता को कहते हैं कि कितना भी बड़ा क्यों ना पाप हो लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करने से वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अरे ये तो छोड़ो, कहते ब्रह्महा पितृहा गोदनो मातृहा आचार्य अगवान राजन, हे राजन न जाने कितने सारे पाप किया लेकिन कोई कृष्ण शब्द एक बार कोई हरि का नाम लेना तो वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी भगवान के नाम की महिमा है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग के जीवात्माओं को करताल, चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग के जीवात्माओं को बहुत सुंदर उपदेश देने के लिए और भक्ति देने के लिए इस धरातल पर आए थे। और चैतन्य महाप्रभु भी इस संसार में जीवात्माओं को कहते हैं, बहुत सुंदर भजन है, कहते हैं जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, भजिबो बलिया से संसार भीतरे, भूलिया रही लो तुमी अविद्यार भरे, तुमार लईते आमी अवतार आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार एने छी औषधि माया नासी बार लागी हरि नाम महामंत्र लव तुमी मांगी भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया से हरि नाम मंत्र लैल मंगिया चैतन्य महाप्रभु यही चीज देने के लिए इस भूतल पर आए इस धरातल पर आए। कलयुग में 550 वर्ष हो गए और कहने लगे जीव जागो जीव जागो। कौन कहने लगे? गौरा चांद चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके खड़े हैं ना वे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो कत निद्रा जाओ माया पिशाची रख खोले। चुड़ैल के गोद में कब तक आप बैठकर सोए रहोगे? पिशाची रख कोले कोले मतलब उनके खोले में। तो हम सब माया रूपी पिशाची की गोद में सोए हुए हैं और कहते हैं भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे। जब माता के गर्भ में था हम सब थे तो पैर ऊपर और मस्तक नीचे। तो 9 महीना जब कष्ट पड़ा तब हमने भगवान को कहा प्रभु हमें जन्म दे दो हम आपका भजन करेंगे भक्ति करेंगे। भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतरे आपने वचन दिया था लेकिन भूलिया रही लो तुमी अविद्यार धरे भरे। लेकिन अविद्या रूपी संसार में फंस गए आकर तो सब कुछ भूल गए। ये तो यहाँ पर सत्संग में आए तो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ थोड़ा बहुत कहते ना थोड़ी ट्यूबलाइट उपड़ी कई लोग बोलते हैं ना ऐसा। अबे मैंने थोड़ी थोड़ी कभी कभी बटन दबाए तो होता है ना थोड़ा थोड़ा लब 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 होता है। तो अभी हमारा ऐसा हो रहा है एकदम पूर्ण प्रकाश अभी तक नहीं हुआ है। वो जो चालू करते तो क्या होता है पड़ 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 होता है ना उस स्थिति पर हम पहुंचे हैं अभी तक। तो यहाँ पर कहते हैं भूलिया रही लो तुमी। गर्भ में भगवान को प्रार्थना किया था कि जैसे ही जन्म होगा मैं आपका प्रभु भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही छोटा हुआ 2 साल का 5 साल का हुआ तब पढ़ाई किया कॉलेज में गया स्कूल में गया नौकरी धंधा किया मित्रों के साथ व्यवहार। अरे ये तो कितना बहुत अच्छा रहता है बहुत अच्छा सेविंग कर पैंट शर्ट बड़ी बड़ी कार में घूमता मेरे पास तो कुछ नहीं है इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। मेरे पास तो ऐसा मोबाइल नहीं है मेरे पास तो ऐसा घर नहीं है। तो उसकी लालच में क्या करता है भूलिया रही लो तुम्हें भगवान को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। कई लोगों कहते हैं आप माला करो सत्संग में आओ हमें तो संसार में फंसाई गया से। महाराज तमे तो मुक्त थी गया तमने कोने कीधु तमे आवी जाओ। वास्तविक में जितने लोगों को आना है इस सेंटर में आ जाओ मंदिर में आपको रहने को खाना पीना सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगेगा। आप यहाँ पर कहते हैं ना खाली यहाँ पर जाएगा पे इन यूज 5 रुपीज। कोई अजनबी व्यक्ति को किसी को जाना है यहाँ पर तो क्या बोल 5 रुपीज देना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर सब कुछ का है कहते हैं पूरे जीवन की जवाबदारी लेते हैं खाना पीना रहना सब कुछ टूथपेस्ट जो भी आपके शरीर में जो भी लगेगा वो यहाँ पर देंगे। आप आओ है किसी की ताकत बोलो आ जाओ रहने को। इतनी मेहनत करते हैं कि आपको सब कुछ दिया जाए इसके लिए तो कर रहे हैं ना सब लोग लेकिन नहीं मुझे स्वयं अपने बलबूते पर और मुझे बहुत इंद्रतुप्ति करनी है। यहाँ पर क्या इंद्रतुप्ति करने मिलने वाली नहीं है। आप तो सुबह 3 बजे उठाओगे और हम उठने वाले हमने तो संकल्प ले लिया है, हम तो 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे, तो मंदिर में नो प्रभु जी, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे हम। हाँ संडे को आएंगे, वो भी आपने भले 5 बजे लिखा है, लेकिन हम 7-7:30 बजे आएंगे, हमारा जब नियम होगा तब। पिक्चर देखने जाना है तो 6 की होगी तो 4 बजे से तैयार होता है ना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, चप्पल पहना, ये करना वो करना, सब कुछ अंदर सब कुछ रखते हैं, कंघी रखते हैं, स्प्रे रखते हैं, लिपस्टिक रखते हैं, पाउडर रखते हैं, सब रखते हैं, और कितनी तैयारी करते हैं केवल 3 घंटे का पिक्चर देखने के लिए, जहां पर दुखी होना है बस, लेकिन कितनी तैयारी करके जाते हैं यहाँ पर दिव्य सत्संग। अरे तो जित घड़ी बार जी सातद भाग्य से अजी तो इतना रणागते नहीं हुए, मतलब वहां पर कुछ हुआ होगा नहीं, खाली पकड़ आप बैठना पड़ेगा। कई लोग आते हैं मंदिर में तो बैठते हैं ना, यहाँ पर बैठना भी बड़ा बड़ा अश्वमेघ यज्ञ है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में भौतिक संसार की चीज बात आ जाती है, अरे कहीं क्यार ना बैठा छी, अजी उदी चालू नहीं थी, आवन आवन आवा नियम से क्या थी पसी प्रोग्रेस थे। प्रभु जी बहुत आलसी है, उन लोगों को मालूम नहीं प्रभु बिचारे अकेले हैं, उनको प्रसाद बनाना पड़ता है, मंदिर सफाई करना पड़ता है, आरती करना पड़ता है, बाहर भी सब जगह पे प्रचार करना पड़ता है। 15 दिन से प्रभु जी सोए नहीं थे, बाहर गए थे सब जगह पे प्रचार करने, कथा करने, कीर्तन करने, और कई लोग तो वो तो कहने लगे प्रभु जी इधर ही रह जाओ। बताइए प्रभु जी को हम वहां पर गोरखपुर गए थे तो छोड़ते ही नहीं थे, एक दिन और रहो। वहां पर भक्ति भाव बहुत है, क्योंकि भगवान वहां पर प्रकट हुए है ना यूपी बिहार में, तो वहां के लोगों को श्रद्धा बहुत है। तो कहते हैं अविद्या में हम सब भूल गए हैं भगवान को, लेकिन भक्त क्या करते हैं, सबको जगाते हैं कि आओ हर संडे को आओ, तो सुबह में भी हम हरिनाम निकालेंगे और शाम को, मतलब सुबह में हरिनाम संकीर्तन करेंगे नगर कीर्तन, और शाम को हरि कथा रखेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे और भगवान का प्रसाद लेंगे। तो मारे लई ते आमी हईनु अवतार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपके लिए तो मैं गोलोक वृंदावन छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, और कहते आमी बिना बंधु आर के आछे तो मार। कोई लोग कहते हैं ना मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका, इस संसार का कोई कुछ नहीं है, जरूरत पड़े तो फॉल मिस कॉल थी जाए, स्विच ऑफ थी जाए, हमको जरूर जब होगी ना पैसे की उसी समय कहेंगे आप जो नंबर डायल कर रहे हैं वो नंबर स्विच ऑफ है, कवरी क्षेत्र के बाहर है, लेकिन भगवान का नंबर है ना कभी कवरी क्षेत्र के बाहर होने वाला नहीं है, कभी भी आप नाम जब करो निश्चित आपको है ना नेटवर्क लगेगा ही लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये भगवान को एक नंबर लगाना है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं आएगा, आप जो नंबर डायल कर रहे हो वो कवरी क्षेत्र के बाहर है, गोलोक वृंदावन नहीं, तुरंत नंबर लग जाएगा, आपको भगवान का स्मरण होगा ये है। लेकिन यहाँ पर किसी को फोन करेंगे तो क्या होता है, जरूरत के टाइम पे ही फोन उठाता नहीं है, या लगेगा नहीं या कुछ न कुछ होगा, लेकिन भगवान जरूरत के टाइम पर ही फोन उठा लेते हैं, जैसे द्रौपदी का उठाया था, जैसे ही पुकारा हे गोविंद द्वारिका वासी, डायरेक्ट रिंग घंटी वहां पर बजी, ऐसा नहीं कि मिस कॉल हो गया कि स्विच ऑफ हो गया कि नहीं, तुरंत भगवान रक्षा करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और सभी लोगों को क्या कहा, एने छी औषधि माया नाशी बार लागी। यहाँ पर सभी लोगों को भव रोग लगा है, कौन सा रोग है, भव रोग, और भव रोग को मिटाने के लिए एक दवा है, और वो दवा कौन सी है, तो कैसे हरि नाम महामंत्र लव तुमी मागी। सबको भव रोग लगा है, उसकी दवा क्या है, महामंत्र, जो महामंत्र लेता है इस भव सागर से पार हो जाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, क्या है, हरि नाम महा, मैं देने के लिए तो आया हूं लेकिन आप मांगोगे तो दूंगा ना, नहीं मांगोगे तो कैसे दूंगा, कोई भूखा है वो बोलेगा कि मुझे रोटी दो, दाल चावल दो, तो कोई देगा ना। एक कहावत है ना, बोलने से बेर बिकते हैं, गुजराती में कहवा बोले ना बोर वेकाय। तो जैसे ट्रेन में होता है ना, हम रात को 2 बजे सोते हैं तो कान में आके बोले चाय चाय गरम चाय, अरे भाई नहीं पीना है, लेकिन फिर भी वो बोलेगा तो उसका बिकेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब मांगो तो मैं आपको दूंगा, आपको मांग इच्छा ही नहीं तो मैं कैसे दूंगा। लेकिन इस कहते हैं इस पृथ्वी पर केवल एक व्यक्ति मिला चैतन्य महाप्रभु को, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र लैल मांगिया। भक्ति विनोद ठाकुर जो बंगाल में हो गए, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा महाप्रभु किसी को जरूरत नहीं है, सबको भोग भोगतना है, मुझे दे दो मैं ले लूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने महामंत्र को स्वीकार किया। जैसे सब लोग बैठे थे, पटेल का दिख रहा, ठाकुर का दिख रहा, कुंभार का दिख रहा, सब लोग लाइन में बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा मुझ चौनलो करवाई छू, लक्ष्मी जी ने क्या कहा मैं तिलक करने आई हूँ। तो वहां पर जैन का लड़का, वाणिया का लड़का भी बैठा था लाइन में। तो सब लोग एक दूसरे को देखने, अरे तारे कपाड़ में गंदगी से, तारे आ वर्गी, तारे तो परसेवो से मेल से, सब लोग है ना चले गए। लक्ष्मी जी ने कहा जाए कपाड़ धोने आओ, क्या ये सर धो के आता हूँ। और जो वाणिया का जो लड़का था ना बोला लो लक्ष्मी जी मेरा साफ है, तिलक कर दो। जैन एक उदाहरण, सत्य हकीकत घटना है। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी जी है ना जैन को वरी है, वहां पर लक्ष्मी जी का ज्यादा, दूसरे लोग अल्लाह के नाम पे। ये स्थिति वैसे ही संसार में सबको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिलित अवतार है, वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर इस भूतल पर बंगाल में कलकत्ता में प्रकट हुए और सभी लोगों को, पूरे विश्व ब्रह्मांड के सभी लोगों को कहा कि मैं आपको कृष्ण भक्ति देने के लिए आया हूं, लेकिन शर्त एक है, आपको मांगना पड़ेगा, मांगो। तब एक व्यक्ति ने कहा उंगली ऊंचे कहकर कि मुझे दीजिए भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, हरि नाम महामंत्र लैल मांगिया। तो आप सभी का भी ये कर्तव्य बनता है कि भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मैं भी प्रभु आपकी सेवा में लग जाऊं और आपका निरंतर नाम जप करूं। भगवान का नाम लेना यही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा दान है। इस संसार में सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, कहते भगवान के नाम का जप करना, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पतिदेव है, सोचो हमारे पतिदेव है, वो बाहर गए हैं और हमारे पतिदेव की गैर हाजिरी में हम बात करते हैं, हमारे पतिदेव का जो भी नाम है तो उनका नाम लेकर हम बातें करेंगे और वो आएंगे विंडो में से देखेंगे तो क्या करेंगे। पतिदेव का गुणगान होता है तो पतिदेव क्या करेगा, कान में विंडो के सामने ऐसा करके सुनता है ना, मेरा गुणगान गाया जा रहा है, तो कितना खुश हो जाएगा। और पत्नी बोलेगी पतिदेव मुझे 500 रुपए की जरूरत, 500 क्या बोल रही, ले 1000 ले ले, 500 की क्या बात कर रही है, क्यों खुश हो गए ना, क्योंकि उनको पता है कि मेरी गैर हाजिरी में ये मेरी इतनी सेवा कर रही है। तो वैसे ही भगवान भी खुश होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना, जितना अगर हमको 500 चाहिए भगवान 1000 देंगे, 1 लाख चाहिए तो 2 लाख देंगे, प्रमोशन चाहिए तो डबल प्रमोशन हो जाएगा। तो भगवान से मांगिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।